मिस्टर मुखर्जी से मिलने के बाद निक और उसकी टीम अपार्टमेंट में जाने के लिए निकल पड़े। जन्नत बाजार में जाने की तैयारी करने के लिए अब उनके पास सिर्फ एक दिन मौजूद था। यहाँ तो लिफ्ट तक मौजूद नहीं है। जैन अपार्टमेंट की तरफ देखकर मुंह बनाया, जो कि दिखने में काफी सामान्य लग रहा था। कंप्लेन करना बंद करो, जो मिल रहा है वो काफी नहीं है, निक ने उसकी बात का जवाब दिया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा है, जब इसे खुद के स्पेशल्स भी नहीं मिलेंगे तब देखना सबके ऊपर चिल्लाएगा, एम्मा ने कहा और उसके पीछे पीछे चलने लगी। रॉन, जैन और आलिया भी उसके साथ चल रहे थे। पांच मंजिल पार करके जब वे छठे और सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो निक ने वहां पहुंचने से पहले ही सीढ़ियों पर चिल्लाते हुए कहा, आई वॉन्ट सेपरेट फ्लैट, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और ये किस खुशी में, मैं और आलिया एक फ्लैट में रहेंगे, बाकी तुम सब बॉयज एक साथ, एम्मा ने जवाब में चिल्लाया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, निक अगर एक फ्लैट अलग लेना चाहे तो, रॉन ने कहा। एम्मा गुस्से में उसकी तरफ मुड़ी और बोली, ओके देन, मुझे भी अपने लिए अलग घर चाहिए। तुम दोनों अपने अपने पर्सनल इश्यूज को साइड में रखकर काम करोगे, अगर तुम दोनों आपस में ऐसे ही बहस करते रहे तो दोनों को एक घर में लॉक करके हम दूसरे घर में चले जाएंगे। उन दोनों के बहस करने की वजह से रॉन को भी गुस्सा आ गया। इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा और वे ऊपर पहुंचे। जैन फ्लैट का ताला खोल रहा था, तभी पास की फ्लैट की खिड़की खुली और वहां पर एक लड़की उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। देखने में वो लगभग 18-19 साल की लग रही थी। तभी अंदर से एक आदमी की आवाज आई, मीरा, कितनी बार बोला है तुमसे, खिड़की पर मत खड़ी रहा करो, किसे देखती रहती हो सारे दिन, बाकी के तीन फ्लैट तो बंद पड़े हैं। वो लड़की, जिसका नाम मीरा था, उसने बिना अपने पिता की तरफ देखे वहीं से जवाब देते हुए कहा, नहीं बाबा, लगता है हमारे पास भी नेवर्स आ गए हैं। उन लोगों की आवाज़ काफी जोर से आ रही थी कि ना चाहते हुए भी उन सभी का ध्यान उस ओर चला गया। निक ने मीरा की तरफ देखा और झुंझलाते हुए कहा, मिस्टर मुखर्जी तो बोल रहे थे कि यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं रहेगा, फिर ये सब क्या है। रॉन ने धीमी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं, शायद उन्हें इस बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, हम अपने काम के लिए आए हैं, वो कर लेंगे, हम कौन सा इनके साथ जान पहचान बनानी है। नहीं भाई, जान पहचान तो बनानी होगी, वरना इनका शक नहीं हो जाएगा हम पर, आलिया ने कहा। सबने उसकी बात को अनसुना किया और वहां से एक फ्लैट के अंदर चले गए। आलिया मुस्कुराते हुए मीरा को देख रही थी। कितना अच्छा लग रहा है वापस अपनी कंट्री में आकर, यहां से फुर्सत मिलते ही अब्बू और अम्मी से मिलने भी जरूर जाऊंगी, आलिया ने सोचा और वहां से अंदर चली गई। मीरा अभी तक वहीं पर खड़ी थी और उसकी नज़र निक के फ्लैट पर थी। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वो फ्लैट काफी छोटा था और साथ ही काफी दिनों से बंद होने की वजह से बहुत धूल मिट्टी और बदबू भी आ रही थी। हमें यहाँ रहना पड़ेगा, निक ने अपना नाक बंद करते हुए कहा। हाँ, थोड़ी देर पहले कोई हमें सिखा रहा था कि हमें एडजस्ट करना चाहिए एंड ऑल, एम्मा ने उस पर तंज कसा। तुम दोनों बहस करना बंद करोगे, जैन, तुम्हारी मिस्टर मुखर्जी से बात हुई, उन्होंने हमारी आईडी जारी करवा दी है या नहीं, रॉन ने पूछा। उन्होंने कहा है कि वो कल तक आ जाएगी, आर्यन सर उस आदमी के लगातार कॉन्टैक्ट में है जिसे सब लोग सरजी बुलाते हैं, इतनी देर में हम भी सब कुछ सोचने का मौका मिल जाएगा, जैन ने जवाब दिया। आलिया अंदर आई और उसने फ्लैट की हालत देखी तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये सीक्रेट मिशन पर आए हैं या सफाई के काम पर, एक तो पहले से इतना थक गए थे, ऊपर से इतनी भूख लग गई थी, लगता नहीं कि यहाँ कुछ हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, मैं हम सबके लिए खाना ऑर्डर करता हूँ, तब तक तुम लोग सफाई कर लो, कहकर निक बाहर जाने लगा तो एम्मा ने पीछे से उसकी जैकेट पकड़कर उसे अंदर खींचा और कहा, यह हमारा जॉइंट मिशन है, तो खाना भी एक साथ खाएंगे और सफाई भी साथ मिलकर ही करेंगे, यहां से भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना कैप्टन निक, निक ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाया और कहा, तुम लोग सफाई करो, तब तक मैं सफाई का सामान भी तो लेकर आता हूँ, उसके बिना तो प्रॉपर क्लीनिंग होगी नहीं। भाई, कितना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं ये सब काम बिल्कुल पसंद नहीं तो खिसकने का सोच रहे हैं, जैन ने मुस्कुराते हुए सोचा। निक ने वहां से बाहर जाने की बहुत कोशिश की लेकिन एम्मा ने उसे कहीं नहीं जाने दिया, मजबूरन उसे उन लोगों के साथ मिलकर उस फ्लैट की सफाई करनी ही पड़ी। काफी देर सफाई करने के बाद वो जगह बैठने लायक बन चुकी थी, वे लोग खाना खाते हुए बात कर रहे थे। वहां जाने के लिए मिस्टर मुखर्जी ने एक लग्जरी कार का अरेंजमेंट करवा दिया है, उन्होंने कहा है कि हमें वहां पर खुद को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करना है, आलिया ने बताया। वे लोग बात कर रहे थे तभी आर्यन का कॉल आया, लेकिन इतनी जल्दी, अभी तो हमने कोई प्रेपरेशन भी नहीं की थी, निक ने चौंकते हुए फोन पर कहा। बाकी सब चीजों का अरेंजमेंट हो गया है, बस तुम दोनों रात तक पहुंच जाना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैंने बस यही बताने के लिए कॉल किया था, कहकर आर्यन ने कॉल काट दिया। क्या कह रहा है वो, कॉल कट होते ही रॉन ने पूछा। वो बोल रहा है कि वो आदमी सरजी हमें आज रात ही बुला रहा है, चलो अब इन सबको छोड़ो और वहां जाने के लिए खुद को अच्छा सा रेडी कर लो, निक ने कहा और सूटकेस से अपना सामान निकालने लगा। रॉन भी उसके कहने पर तैयार होने चला गया। शाम के लगभग 7 बजे वे दोनों जन्नत बाजार पहुंचे, जहां आर्यन एक आदमी के साथ खड़ा था। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था और माथे पर बड़ा सा लाल टीका लगा रखा था। इनसे मिलिए सर, ये सरजी हैं, आर्यन ने परिचय देते हुए कहा। उस आदमी ने कुटिल हंसी के साथ अपने दोनों हाथ जोड़े और मुंह में पान चबाते हुए कहा, प्रणाम, कैसी बात कर रहे हैं आप अरुण जी, आर्यन का फेक नाम, इन्हें कहाँ हिंदी आती होगी। नहीं, इन्हें हिंदी आती है, आर्यन ने उस आदमी को बताया। उसकी बात सुनकर सरजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर हेलो कहा। निक और रॉन ने भी बिना हाथ मिलाए उससे हेलो कहा। उनके हाथ न आगे बढ़ाने की वजह से सरजी ने झपटते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया। सर जी निक और रॉन से मिलकर बहुत खुश हुआ। वो उन्हें देखकर ही समझ गया था कि वे काफी ज्यादा पैसे वाले थे और उनसे उसे काफी फायदा हो सकता था। प्रोग्राम शुरू होने में तो थोड़ा टाइम है, तब तक हम आपको जन्नत बाजार की सैर करवाते हैं, बोलते हुए सर जी आगे बढ़ा और उन लोगों को जन्नत बाजार की गलियों में घुमाने लगा। तो ये दोनों अमेरिका से आए हैं, देखने में दोनों अमीर भी लग रहे हैं। इस बार मोटी मछली हाथ लगी है, बोला तो था मैंने सुनहरी ताई से कि हाँ बोल देना। सर जी ने उन दोनों की तरफ देखकर सोचा, आप इन गलियों में ही घुमाते रहोगे या? निक ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि सर जी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अरे ठंडा रहिए सर, अभी जन्नत बाजार की जन्नत के सजने का टाइम नहीं हुआ है। बस एक बार आप उस जन्नत में चले जाओगे तो बाकी दुनियादारी आपको फीकी लगेगी। वो लोग जिस जन्नत बाजार की बात कर रहे थे वो कोलकाता का फेमस रेड लाइट एरिया था। जन्नत बाजार वहां के मोहल्ले का नाम था, जहां सामने एक बड़ी सी कोठी और आसपास 10-15 छोटे मोटे घर और दुकानें लगी हुई थी। उन सबको काफी खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन वहां का माहौल कुछ खास नहीं था। वहां ज्यादातर आदमी भी घूम रहे थे जो कि नशे में थे। गॉड नोज ये हमें कौन सी जगह पर ले आया है, कितने अजीब अजीब से लोग हैं यहाँ, निक ने इधर उधर देखते हुए सोचा।
आर्यन ने निक की तरफ देखकर सोचा, मुझे पता है निक, तुझे इस एटमॉस्फेयर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ जो हो सकता है बहुत अच्छे घरों की हों, और यहाँ आने के बाद उनकी जिंदगी बदतर हो गई है। अब तो बस एक ही मकसद है, इन सबको यहाँ से आज़ादी दिलवाना। वे वहाँ घूमते हुए रात के 9 बज चुके थे। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी वहाँ पर आने वाले आदमियों की संख्या बढ़ रही थी। उन आदमियों में हर तबके के लोग मौजूद थे, कुछ बिल्कुल सामान्य तो कुछ बड़े ओहदे वाले भी थे। निक, रॉन और आर्यन उस आदमी सरजी के साथ आगे गए। उसने उन्हें सामने की बड़ी सी कोठी में ले गया। कोठी को लाइटों से सजाया गया था और वहां शराब और परफ्यूम की मिलीजुली खुशबू आ रही थी। वहां जाते ही निक और रॉन ने चारों तरफ देखा तो सामने काफी सारी लड़कियां एक अधेड़ उम्र की औरत के आसपास खड़ी थीं। वे सब जरूरत से ज्यादा ही सजी धजी बैठी थीं। उस औरत पर नजर पड़ते ही सरजी हंसते हुए उसके पास चला गया। उसके हटते ही निक ने रॉन और आर्यन से धीरे से कहा, मुझे उल्टी आ रही है। लेकिन अभी कुछ मत करना, आर्यन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। निक और रॉन वहां चारों तरफ देख रहे थे तो तभी उनकी नज़र लड़कियों के दूसरे ग्रुप पर गई। लगभग 10 से 13 साल की छोटी बच्चियां मौजूद थीं। उन्हें देखते ही उन दोनों के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। निक ने अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा, ये बच्चियां यहां क्या कर रही हैं? आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, इतने समझदार तो तुम भी हो। निक उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले उनके पास वो सरजी आ गया और उन्हें सामने लगे एक बड़े से सोफे पर बिठा दिया। उसने कुछ लड़कियों को इशारा किया जो उनके लिए ड्रिंक लेकर आईं। आर्यन ने उन्हें मना करते हुए कहा, ये इनके टाइप की नहीं है। उनके मना करते ही लड़कियां वहां से चली गईं। तभी वहां की लाइट डिम हो गई और म्यूजिक लाउड कर दिया गया। इसी के साथ सामने बने स्टेज पर जन्नत की एंट्री हुई। वो म्यूजिक पर थिरक ले ही थी और उसका चेहरा सामने के बजाय पीछे की तरफ था। उसके आते ही वो अधेड़ उम्र की औरत जोर से चिल्लाते हुए बोली, जन्नत, आज तो कई दिल जले आए हैं महफिल में, दिल टूटा है कईयों का जो तेरा डांस ही जोड़ सकता है। तभी एक शराबी उसके पास गया और पैसे फेंकते हुए बोला, ए सुनहरी ताई, बोल कितने पैसे फेंकूं? जन्नत को बोल मेरे बताए गाने पर थिरके, मुझे भी अपना टूटा दिल जुड़वाना है। सुनहरी के इशारा करने पर कुछ लड़कियां पैसे बटोरने लगीं और उसने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ म्यूजिक लाउड हो जाता है और जन्नत का डांस भी। निक, रॉन और आर्यन थोड़ा साइड में बैठे थे तो उसे जन्नत का चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसने थोड़ा इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, ये इसका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा और इसकी ड्रेस कितनी एक्सपोजिंग है, इसी की वजह से इन बाकी लड़कियों की जिंदगी खराब हो रही है, आखिर है कौन ये जन्नत? मैंने भी इससे पहले जन्नत को कभी नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि जन्नत बाजार की शान और असली जन्नत जन्नत ही है, आर्यन ने बताया। थोड़ी देर में जन्नत का डांस खत्म होता है और डांस के अंत में उसका चेहरा निक, रॉन और आर्यन की तरफ था। उसने अपना चेहरा अपने घुटनों पर रख रखा था और इसी के साथ उसके चेहरे पर लाइट गिरते ही वे तीनों चौंक गए। उसे देखकर निक खड़ा हो गया और नम आंखों से कहा, प्रियल।